अयि मित्रगणाः, स्वागतं व्याहरामि रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे. अहं लीना मेहेन्दळे पुनरपि उपस्थितः अस्मि. अयि मित्राणि, गतरविवासरे वयं महाकविपण्डितजयदेवस्य नृसिंह अवतारस्य कथाम् अपठाम. अद्य वयं वामन अवतारस्य कथां पठिष्यामः. पण्डितवर्यः लिखति, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन पदनख नीरजनित जन पावन केशव धृतवामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. तो नमस्कार मित्रों, रेडियो मधुबन पर हम फिर से उपस्थित हैं अपने पठामी संस्कृतम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए. और पिछले कुछ रविवार हमने पंडित जयदेव लिखित दशावतार की कथाएं पढ़ना आरंभ किया है. तो आज के इस सत्र में हम पंडित जयदेव द्वारा वर्णित वामन अवतार की कथा को देखने जा रहे हैं. पंडित जयदेव लिखते हैं कि छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, अर्थात हे अद्भुत शक्ति का परिचय देने वाले वामन, तुमने अपनी इस अद्भुत शक्ति से बलि को छला है. तो यह कथा क्या है, पहले इसको समझेंगे. दैत्यराज बलि अत्यधिक बलवान हो गया था और स्वर्ग को भी उसने जीत लिया था, और वही पृथ्वी पर, पाताल पर और स्वर्ग पर, अर्थात तीनों लोकों पर राज्य कर रहा था. बलि स्वयं पुण्यशील था, पुण्यात्मा था, परंतु चूंकि वह दानवों का राजा था, दैत्यों का राजा था, तो उसके राज्य में बाकी दैत्य दुर्निवार हो रहे थे और उनके अत्याचारों को रोकना मुश्किल हो रहा था. इसलिए यह आवश्यक हो गया कि बलि को राज्य पद से हटाया जाए. परंतु वह अत्यंत पुण्यशील होने के कारण साधारण प्रयत्नों से उसे राज्य विहीन करना असंभव सा था. इस स्थिति पर उपाय निकालने के लिए विष्णु का आवाहन किया गया. तो विष्णु ने एक अतिशय छोटे बालक का रूप धारण किया जिसका नाम वामन था. वह एक पंडित के रूप में बलि के सामने उपस्थित हुआ और भिक्षा देने के लिए आग्रह करने लगा. उसके छोटे रूप के बावजूद उसकी विद्वत्ता देख करके बलि के गुरु जो शुक्राचार्य थे, उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने बलि से कहा कि इस बालक को तुम कोई भिक्षा देने के लिए तत्पर मत होना, इसे मना कर दो. लेकिन बलि ने कहा कि यह तो मेरा व्रत है, इससे मैं विमुख नहीं हो सकता, इसलिए अगर यह बालक मुझसे भिक्षा मांग रहा है तो मैं इसे भिक्षा अवश्य दूंगा. और उसने वामन से पूछा कि तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए. वामन ने कहा, बस मेरे तीन पग जितनी जमीन नाप सकते हो उतनी तुम मुझे दे दो. उसका वह छोटा रूप देख करके सबको हंसी आई कि यह छोटा बालक भला तीन डगों में कितनी भूमि नापेगा. तो शुक्राचार्य के समझाने के बावजूद बाकी सब लोगों ने बलि को उत्साहित किया, और बलि स्वतः भी उत्साहित था ही. तो उसने संकल्प पूर्वक उस छोटे बालक को तीन डगों में नापी जाने लायक भूमि का दान किया और उससे कहा कि अब तुम तीन डग चलो और जितनी भूमि नाप सकते हो उतनी तुम्हें दान में मिली समझो. इस प्रकार बलि का संकल्प पूरा होने के बाद वामन ने अपना बटु स्वरूप त्याग करके अत्यंत बृहत आकार धारण करना आरंभ किया. उसके शरीर का विस्तार बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इतना अधिक बढ़ा कि पहले डग में उसने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे डग में उसने स्वर्ग को भी नाप लिया. फिर उसने बलि से पूछा, तुमने मुझे तीन डग भूमि देने का संकल्प लिया है, दो डग तो मैं छेक चुका, अब यह तीसरा डग मैं कहाँ रखूँ. इस पर बलि को समझ आ गई कि यह कोई सीधा साधा बालक नहीं है, बल्कि स्वयं उसके आराध्य श्री विष्णु हैं. तब बलि ने मस्तक झुका करके विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, तीसरा डग आप मेरे मस्तक पर रखिए और अपने कृपा प्रसाद से मुझे सदा के लिए लाभान्वित करिए। मुझे यह वर दीजिए कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ आप भी विराजमान होंगे। तो वामन ने उसे यह वरदान देते हुए उसके मस्तक पर अपना चरण रखा और इस तरह दबाया कि बलि सीधा पाताल लोक में चला गया। लेकिन विष्णु ने जो उसे वरदान दिया था उसके कारण बलि के निवास स्थान पाताल में विष्णु का भी निवास प्रस्थापित हो गया। और चूंकि बलि संपूर्णतया विष्णु के सख्य में, विष्णु के सान्निध्य में और उनकी छत्रछाया में रहने लगा, तो वह चिरंजीवी भी हो गया। इस प्रकार यह माना जाता है कि बलि राजा चिरंजीवी है और पाताल में जहाँ वह राज्य करता है वहाँ उसके साथ विष्णु भी निवास करते हैं। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी पर से उसका साम्राज्य हट जाने के कारण जो बाकी दैत्य यहाँ पर उत्पात मचाया करते थे या अत्याचार किया करते थे, उनको पराजित करना या उनको नष्ट करना और उनके अत्याचारों को समाप्त करना यह संभव हो सका। इसी घटना का आधार लेते हुए जयदेव ने यह श्लोक रचा है कि छलयसी विक्रमणे, छलयसी अर्थात तुम छलते हो, किसे छलते हो तो बलि को, छलयसी बलिम, बलिम छलयसी बलि को छलते हो, और विक्रमणे विक्रम पूर्वक, विक्रम अर्थात जो बड़े बड़े डग विष्णु ने भरे, बहुत अधिक विस्तारित उनके डग थे जिस कारण पहले डग में पृथ्वी को और दूसरे डग में स्वर्ग को ही नाप लिया, तो ऐसे बड़े बड़े डगों से विश्व को नाप करके, विश्व को नापते हुए हे वामन, तुमने बलि को छल करके पृथ्वी को अन्य दैत्यों के अत्याचार से बचाया। तो इस प्रकार अद्भुत यह तुम्हारी चाल थी। तो मित्रों, यहाँ विक्रमणे यह तृतीया का रूप है, विक्रम पूर्वक, विक्रम से, विक्रम के साथ, इस प्रकार इस शब्द का अर्थ हुआ। और इस विक्रम के कारण ही विष्णु का एक नाम पड़ा है त्रिविक्रम, अर्थात तीनों लोकों को नापने वाला जो विक्रम विष्णु ने दिखाया उसके कारण उनका नाम पड़ा त्रिविक्रम। और आगे जयदेव कहते हैं, पदनख नीर जनित जन पावन, पदनख नीर जनित, यह गंगा का वर्णन है। कहते हैं कि जब विष्णु ने अपने दूसरे डग में स्वर्ग को नापा तब वहाँ ब्रह्मा भी उपस्थित थे और उनके कमंडलू में गंगा वास किया करती थी। तो जैसे ही ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु ने अपना पग स्वर्ग में रखा है, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रह्मा ने तुरंत अपने कमंडलू में से गंगा जल निकाल करके विष्णु के पांव में अर्घ्य चढ़ाया। इस प्रकार गंगा जी ब्रह्मा के कमंडलू से निकल करके विष्णु के पैर के नख में समा गई। तो पद नख अर्थात पैर का नख, और नीर अर्थात पानी। तो पद नख नीर जनित जन पावन अर्थात तुम्हारे उस पैर के नख से जो गंगा का पानी निकला, जो कि अंततः भगीरथ की तपश्चर्या के बाद पृथ्वी पर अवतरित हुआ और जनों को पावन करने लगा, जनों को पाप से मुक्ति दिलाने लगा, उन्हें पुण्यवान बनाने लगा, तो ऐसा तुम्हारा वामन अवतार था जिसने एक तरफ बलि को पाताल में धकेल करके बाकी दैत्यों के अत्याचार से पृथ्वी और स्वर्ग को मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर गंगा को अपने पैर के नख में समा करके रखा और आगे चल करके भगीरथ की तपश्चर्या के बाद उसे पृथ्वी पर अवतरित किया। ऐसी तुम्हारी अद्भुत लीला रही। तो हे केशव, हे धृत वामन रूप अर्थात वामन रूप धारी, और जगदीश, हे जगदीश, हे हरे, तुम्हारी जय हो। तो मित्रों, यह वामन अवतार की कथा हमने सुनी और एक बात पर तुमने गौर किया होगा कि इस अष्टपदी में जयदेव ने विष्णु को सदा ही केशव नाम से संबोधित किया है, जो कि प्रायः कृष्ण के नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो जयदेव ने कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं किया है और कृष्ण को ही विष्णु मान करके इस अष्टपदी में वारंवार केशव संबोधन का उपयोग किया है। तो मित्रों, इसी कथा के साथ हम आज का अपना पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।